जी शुरू कर रहे हैं। ओके जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रिजालु कव्वामून अलन्निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअ'दहुम अला बअ'दिन वबिमा अन्फ़क़ू मिन अम्वालिहिम। فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 تھیں، ان کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس میں۔ تو معارف مسائل پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ معارف مسائل میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء کے شروع سے یہاں تک بیشتر احکام اور ہدایات عورتوں کے حقوق سے متعلق آئی ہیں، جن میں ان مظالم کو مٹایا گیا ہے جو اسلام سے پہلے پوری دنیا میں اس صنف نازک پر توڑے جاتے تھے۔ اسلام نے عورتوں کو وہ تمام انسانی حقوق دیے جو مردوں کو حاصل ہیں۔ اگر عورتوں کے ذمے مردوں کی کچھ خدمات آئی تھیں تو مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق فرض کیے۔ ٹھیک ہے، تو آسان سی بات ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آتی ہوگی۔ سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ایسے ہی واجب ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ والی آیت جو ہے یہ اتنی مشہور نہیں ہوئی، ہے نا؟ یہ والی آیت الرجال قوامون علی النساء، اس کی مشہوریت جو ہے وہ یعنی آسمانوں سے باتیں کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارے کلچر کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے۔ اب اس میں نعوذ باللہ کوئی آیت کا قصور نہیں ہے، کوئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نظام کا قصور نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے نظام ایسا ہو گیا کہ یہ زیادہ مشہور ہو گیا، بلکہ ہماری اپنی جو کوتاہیاں اور ہماری اپنی جو حرکتیں ہیں تو ان کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا وہ الرجال قوامون علی النساء کو یہ ایسا مشہور کیا ہوا ہے کہ یعنی بچہ بچہ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بندہ بندہ کی زبان پر آئیے، ہے نا؟ لیکن سورہ بقرہ کی یہ والی آیت وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ٹھیک ہے، یہ والی آیت جو ہے وہ بندہ بندہ تو کیا کسی کی بھی زبان پر نہیں ہوتی یہ والی آیت۔ ٹھیک ہے، تو یہ سلیکٹو جس کو کہتے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، اسی کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس میں دونوں کے حقوق کی مماثلت کا حکم دے کر اس کی تفصیلات کو عرف کے حوالے سے فرمایا۔ جاہلیت اور تمام دنیا کی ظالمانہ رسموں کا یکسر خاتمہ کر دیا۔ ہاں یہ ضروری نہیں کہ دونوں کے حقوق صورت کے اعتبار سے متماثل ہوں، صورت کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کی مثل ہوں، ایک دوسرے کے بالکل ایکول ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، بلکہ ایسا ہے ہی نہیں کہ صورت کے اعتبار سے بھی ہوں، لیکن سیرت کے اعتبار سے یا یہ کہ کوالٹی کے اعتبار سے دونوں کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کوانٹیٹی کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کوالٹی کوانٹیٹی کہنا چاہیں، صورت سیرت کہنا چاہیں، ٹھیک ہے، یا جس طرح سے بھی آپ پٹ کریں اس چیز کو، لیکن دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، یہ تو پکی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، بلکہ عورت پر فرمایا کہ ایک قسم کے کام لازم ہیں، یعنی عورت پر ایک قسم کے کام لازم ہیں تو اس کے مقابل مرد پر دوسری قسم کے کام ہیں۔ عورت امور خانہ داری और बच्चों की तरबियत और हिफाजत की जिम्मेदार है तो मर्द उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कस्ब मुआश का जिम्मेदार है। ठीक है ना, कस्ब मुआश यानी कमाना, ठीक है ना, मेहनत करना, मजदूरी करना, दफ्तर में जाना, दुकान पे बैठना, इसका जिम्मेदार अल्लाह ताला ने किसको बनाया है? मर्द को बनाया है। और औरत को किस चीज का जिम्मेदार बनाया है? उमूर खानादारी, खानादारी मतलब घर, और बच्चों की तरबियत और हिफाजत की जिम्मेदारी औरत को अल्लाह ताला ने दी है। औरत के जिम्मे मर्द की खिदमत व अताअत है तो मर्द के जिम्मे उसका मेहर और नफका यानी तमाम जरूरी अखराजात का इंतजाम है, तमाम जरूरी अखराजात का। ठीक है, अब ये तमाम के अंदर क्या क्या आता है, ये इसमें हम बहुत ज्यादा डंडी मारते हैं। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से तमाम को डिफाइन करते हैं लेकिन उसमें से बहुत सारी चीजों का हम निकाल देते हैं कि औरत की और क्या क्या जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं। तो बस हमें औरत की तरफ से खिदमत और अताअत चाहिए होती है, अपनी तरफ से हम औरत को उसके हुकूक नहीं देना चाहते। गर्ज़ इस आयत ने औरतों को मर्दों के मुमासिल हुकूक दे दिए, ठीक है, बराबर हुकूक दे दिए, सूरतन मुख्तलिफ है, लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है जिसमें मर्दों को औरतों पर तफव्वुक और एक खालिस फजीलत हासिल है। खालिस का मतलब कि एब्सोल्यूट फजीलत, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस मर्दों को एक मामले में अल्लाह ताला ने औरतों के ऊपर ऊपर रखा है, ऊंचा दर्जा रखा है। ठीक है, तफव्वुक का मतलब फौक, फौक मीन्स ऊपर। ठीक है, इसलिए इस आयत के आखिर में फरमाया वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजतन, यानी मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फजीलत का हासिल है। इन आयात में इसी दर्जे का बयान कुरान करीम के हकीमाना तर्ज बयान के साथ इस तरह किया गया है कि मर्दों की ये फजीलत और तफव्वुक खुद औरतों की मसलहत और फायदे के लिए और ऐन मुक्तज़ाए हिकमत है। ठीक है, यानी ये जो मर्दों को ऊपर का की जिम्मेदारी दी गई है ना, ऊपर का मुकाम दिया गया है, तो इसमें भी औरतों के लिए ही फायदा है और हिकमत का तकाजा यही है। इसमें औरत की ना कसरे शान है, कसरे शान का मतलब शान का टूटना, कसर मींस टूटना, तो शान का टूटना इसके अंदर नहीं है और ना ही उसका कोई नुकसान है। ठीक है, इरशाद फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, तो इसमें जो लफ्ज़ कव्वाम है तो वो उसकी तहकीक लिखी है कि कव्वाम, कयाम, कय्यम अरबी जुबान में उस शख्स को कहा जाता है जो किसी काम या निज़ाम का जिम्मेदार और चलाने वाला हो। जिम्मादार, जिम्मेदार का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी उठाने वाला, राइट, रिस्पॉन्सिबल। और इसी के लिए अंग्रेजी में एक और लफ्ज़ होता है आंसरेबल, उर्दू में उसको कहते हैं जवाब देह। यानी गर्दन किसकी पकड़ी जाएगी जब मामला खराब होगा? मर्द की पकड़ी जाएगी, बिकॉज वो कवाम है, बिकॉज वो जिम्मेदार है। ठीक है, बीवी गलत काम कर रही है, बच्चे गलत काम कर रहे हैं, घर का निज़ाम खराब हो रहा है, फसाद, झगड़ा, लड़ाई हो रही है, पकड़ा किसको जाएगा? मर्द को पकड़ा जाएगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि कवाम बन गए भाई, अब बैठ के खाएंगे, खस्से के साथ बैठ के खाएंगे। जिस तरह से वो हलवाई की दुकान होती है ना, तो उसके ऊपर एक मोटा सा हलवाई जो होता है ना, वो बैठा हुआ होता है और उसके पास जो है ना, वो जो यानी वो या कि उसके पास सारे लोग पैसे दे रहे होते हैं आकर के। ठीक है ना, वो उस दुकान का जो होता है ना ठेकेदार होता है, तो सारे पैसे जो है ना उसके पास आते हैं और वो बस जो है ना थोड़ा सा चेंज वेंज निकाल करके लोगों को वापस कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला मामला नहीं है, बल्कि जैसे आपने लिखा मसूल। ठीक है, तबलीग जमात के माहौल के अंदर मसूल का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि हमारे मशायख के यहाँ पर मसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, हदीस के अंदर भी यही है, कुल्लुकुम राइन, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही। इसीलिए इस आयत में कवाम का तर्जुमा अमूमन हाकिम किया गया है, यानी मर्द औरतों पर हाकिम है। मुराद ये है कि हर इज्तिमाई निज़ाम के लिए अकलन और उर्फन ये जरूरी होता है कि उसका कोई सरबराह या अमीर और हाकिम होता है कि इख्तलाफ के वक्त उसके फैसले से काम चलेगा, जिसको आर्बिट्रेटर भी कहते हैं। ठीक है ना, कि जब दो मामलों यानी किसी मामले के अंदर यानी इक्वल वोट्स हो जाएं या इख्तलाफ हो जाए, तो कोई एक ऐसा अगर शख्स हो कि जिसका के फैसला हतमी माना जाता हो, ठीक है ना, तो उसको आर्बिट्रेटर भी कहते हैं और उसको हाकिम भी कहते हैं। तो हाकिम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो बैठ कर के हुक्म चला रहा हूँ, बल्कि इस किस्म की सिचुएशन के अंदर उसकी बात मानी जाएगी। ठीक है, तो इख्तलाफ के वक्त उसके फैसले से काम चल सके, यानी काम जो है वो खड़ा ना हो जाए, रुक ना जाए, बल्कि काम चलता रहे, चीजें जो है ना वो सॉल्व होती रहे। तो इसके लिए हाकिम की जरूरत होती है। अगर हाकिम नहीं होगा ना, तो फिर मसला जो है वो खड़ा का खड़ा रह जाएगा और इसमें स्टेलमेट हो जाएगा और बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि 20-20 साल 30-30 साल जो है वो मुकदमा कोर्ट के अंदर होता है और फैसला ही नहीं हो पा रहा होता है। तो यानी कोई हुक्म ही नहीं दे रहा होता, तो इस वजह से कोर्ट के अंदर कई कई डेकेड्स तक जो है वो मसले फंसे रहते हैं। कश्मीर का मसला भी तो इसी तरह का है ना, कोई फैसला ही करने वाला नहीं है, है ना, तो खड़ा हो गया उस वक्त से अब तक। बल्कि अब तो किसी ने कहा कि ऐसी की तैसी, तुम करते रहो अपना फैसला, हम तो जो चाहते हैं वो करके दिखाएंगे, और उन्होंने कर लिया। ठीक है ना, तो किसी कल तो बैठा ना कम से कम ये मसला। जिस तरह मुल्क को सल्तनत और रियासत के लिए इसकी ज़रूरत सबके नीचे सबके नज़दीक मुसल्लम है, इसी तरह कबाइली निज़ाम में भी इसकी ज़रूरत हमेशा महसूस की गई और किसी एक शख्स को कबीले का सरदार और हाकिम माना गया है। इसी तरह इस आयली निज़ाम में, आयली निज़ाम का मतलब खानदानी निज़ाम, इसमें जिसको खानदारी कहा जाता है, इसमें भी एक अमीर और सरबराह की ज़रूरत है। औरतों और बच्चों के मुकाबले में इस काम के लिए हक़ ताला ने मर्दों को मुंतखब फरमाया कि उनकी इल्मी और अमली क़ुव्वतें बनिस्बत औरतों बच्चों के ज़्यादा हैं। ठीक है, यानी इससे क्या पता चल रहा है कि जो एक ख़ानदान होता है ना, वो ख़ानदान के अज्जा कौन से होते हैं, मर्द, ठीक है, औरत और बच्चे, ये है एक फैमिली। ठीक है, तो अब इन तीन कैटेगरीज के दरमियान जब आप कंपेयर करते हैं तो इल्मी और अमली कुव्वतें बच्चों की ज़्यादा होंगी, बीवी की ज़्यादा होगी या शौहर की ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो अब कॉमन सेंस भी है, अकल का तकाजा भी यही है कि मर्द की जो है वो ये सलाहियतें ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, और अक्सर होती भी हैं, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने जो है वो मर्दों को ये मामला दिया है। ठीक है, तो ये होती है एक फैमिली, मर्द, बीवी, बच्चे। ठीक है, बाकी जो लोग होते हैं ना उसको कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, वो फैमिली नहीं होती, वो होती है एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है ना, जैसे कि दादा हैं, नानी हैं, दादी हैं, और पप्पो हैं, और खाला हैं, और चचे हैं, और ये हैं और वो हैं, ये सब भी फैमिली है, लेकिन इसके लिए अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है एक्सटेंडेड फैमिली। लेकिन जो एक फैमिली होती है ना, जिसको कि एक इकाई कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है, यूनिट ऑफ द सोसाइटी, वो फैमिली जो है वो शौहर, बीवी, बच्चे, ये होती है फैमिली। ठीक है ना, तो इन्हीं के दरमियान जब आप देखेंगे तो फिर जो है वो शौहर जो है वो सबसे ज़्यादा इन तीनों के मुकाबले में हाकिम नज़र आएगा। तो उसको अल्लाह ताला ने ये मामला दिया है कि वो फैसला करेगा, अल्टीमेट फैसला जो है वो उसके हाथ में होगा। ये ऐसा बदीही मामला है कि कोई समझदार औरत या मर्द इसका इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, इनकार करने वाले बहुत हैं दुनिया के अंदर, लेकिन जो इनकार करते हैं वो समझदार नहीं होते, वो नासमझ होते हैं। ठीक है, बदीही का मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ यानी जिसको कि किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ना पड़े, वो बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आयां हो, बिल्कुल जाहिर हो। ठीक है, मंतिक के अंदर ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बदीही मामला। ठीक है, तो ये बिल्कुल, यानी इसके लिए ना कोई 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 अकली नकली दलाइल की कि हाँ भी कुरान में ऐसा लिखा हुआ था या हदीस में ऐसा लिखा हुआ था या आइंस्टाइन ने ऐसा कहा था या न्यूटन ने ऐसा कहा था या जो है वो यानी वो अरस्तू ने ऐसा कहा था, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर है, ठीक है ना, इसके लिए आपको इन सारे दलाइल की ज़रूरत ही नहीं है, बदीही मामला है, ठीक है ना। खुलासा ये है कि सूरह बकरा की आयत में वलिर्रिजाले अलैहिन्न दरजतन फरमाकर, और सूरह यानी बकरा की आयत क्या है कि रिजाल के लिए औरतों के ऊपर एक दर्जा है, ठीक है, एक स्टेप अबव है वो, फरमाकर। और सूरह निसा की आयत मुतदक्करा में अर्रिजालु कवामूना अल निसा फरमाकर ये बतला दिया गया कि अगरचे औरतों के हुकूक मर्दों पर ऐसे ही लाजम वाजिब हैं जैसे मर्दों के औरतों पर हैं और दोनों के हुकूक बाहम मुमासिल हैं, लेकिन एक चीज़ में मर्दों को इम्तियाज़ हासिल है कि वो हाकिम है। और कुरान करीम की दूसरी आयात में ये भी वाज़े कर दिया गया है कि ये हुकूमत जो मर्दों की औरतों पर है, अब ये बात जो है ना वो हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि ये हुकूमत जो मर्दों की औरतों पर है महज आमरियत और इस्तिबदाद की हुकूमत नहीं है, ठीक है। आमरियत क्या कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं, अमर करना, हुक्म करना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप क्या होती है, पाकिस्तान वाले तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है इससे, ठीक है ना, कि कोई जो है ना वो अपने फिजिकल माइट की वजह से जो है ना वो हुकूमत पे कब्जा कर लेता है, ठीक है ना। मिलिट्री डिक्टेटर का लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के अंदर, और फिर जो है ना वो जो चाहता है हुक्म देता है, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता, उसको किसी मशवरे की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। उसके लिए जो है ना वो नीचे जो है वो कोई नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट, कोई मजलिस शूरा, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। अगर होती भी है तो वो भी उसके अपने ही इशारों पे चल रही होती है, वो भी उसने बस लोगों को दिखाने के लिए एक मजलिस शूरा बनाई हुई होती है, एक उसने बनाया हुआ होता है इस तरह की चीज़, ठीक है। लेकिन असल में हुक्म जो है वो उसी का चल रहा होता है, ठीक है ना, वो डिक्टेट करा रहा होता है और बाकी जो लोग होते हैं वो डिक्टेशन ले रहे होते हैं, इमला ले रहे होते हैं, ठीक है। तो डिक्टेशन लेने वाला जो होता है ना वो चेंज नहीं कर सकता हुक्म को, वो जो है ना वो हुक्म को के अंदर जो है वो अपनी तरफ से मशवरे नहीं दे सकता, उसका काम है इमला, इमला लेना, जो भी उसको कहा जा रहा है वही बात जो है वो लिख लेना, ठीक है। इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, टोटलिटेरियन रेजिम भी इसी को कहते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान में मशहूर तो ये अल्फाज बहुत हुए हैं लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं है, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि सारे डिक्टेटर्स ही थे, जैसे दाऊद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, राइट, वो उनका जरा एक डिफरेंट सिस्टम था क्योंकि वो जरा दीनी टच के आदमी थे, ठीक है। लेकिन पिछले वाले जो थे उनमें जरा ज्यादा ये डिक्टेटरशिप थी, अयूब खान साहब के बारे में ज्यादा मशहूर है कि वो डिक्टेटरशिप उनके अंदर जरा ज्यादा थी, उनका मिजाज भी ऐसा ही था वगैरह, ठीक है। खैर, आमरियत और इस्तेदार, इस्तेदार का मतलब होता है कि यानी यानी क्या कहते हैं, यानी दबाने, दबा करके जो हुकूमत करी जाती है। अच्छा, बल्कि हाकिम यानी मर्द भी कानून शरा और मशवरे का पाबंद है, ठीक है ना। यानी ये जो डिक्टेटर साहब होते हैं ना, यानी ये जो हाकिम साहब होते हैं, ये भी ऊपर के अहकाम के पाबंद होते हैं, इनके ऊपर भी कोई है, ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कोई नहीं है, बल्कि इन्होंने भी शरीयत को का पाबंद अपने आप को बना के रखना है, और नीचे से भी मशवरा करना है, नीचे वालों से भी मशवरा करना है, ठीक है। इसके बराबर में तो कोई नहीं होता, इसके बराबर तो कोई नहीं होता, इसके ऊपर होते हैं और इसके नीचे लोग होते हैं, ठीक है। तो ऊपर वालों का हुक्म मानना है और नीचे वालों का मशवरा, नीचे वालों से मशवरा करना है, ठीक है। महज अपनी तबीयत के तकाजे से कोई काम नहीं कर सकता कि जी मेरा जी चाह रहा है तो मैं ये काम कर रहा हूँ, आप कर लो जो करना है, मैं ना मानूँ, ऐसा नहीं कर सकता ये। उसको हुक्म दिया गया है कि आशिरुहुन्ना बिलमारूफ, भाई जिस अल्लाह ताला ने अर्रिजालु कवामूना अलन्निसा अपनी किताब के अंदर लिखा है, लिख रखा है, तो उसी अल्लाह ताला ने आशिरुहुन्ना बिलमारूफ का हुक्म भी तो दिया है ना इसको, ठीक है, यानी औरतों के साथ मारूफ तरीके पर अच्छा सलूक करो। इसी तरह दूसरी आयत में अन तरादुम मिनहुमा व तशावुरिन की तालीम है, जिसमें इस बात की हिदायत की गई है कि उमूर खानदारी में बीवी के मशवरे से काम करें, यानी मशवरा लें, ठीक है। तो वो अहले मशवरा है अपने घर के मामलात में, क्योंकि वो घर के अंदर ज्यादा रहती है, वो घर की एक एक
कोने कुतरे से वाकिफ होती है, क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है, कौन सी चीज़ कैसे हो रही होती है, ठीक है। तो अब जिसको जिस चीज़ का ज्यादा इल्म होता है तो उससे उस चीज़ के बारे में मशवरा लेकर के फैसला करना, यही अकल का तकाजा है। इस तफसील के बाद मर्द की हाकिमियत औरत के लिए किसी रंज का सबब नहीं हो सकती, ताहम ठीक है भाई आपको किस बात का रंज है, आपके मशवरे के बगैर काम करेगा तो गुनाहगार होगा और उसकी उसको सजा मिलेगी, ठीक है। तो अब आपको किस बात का रंज है, एक तो जिम्मेदारी आपके ऊपर से हटा दी है कि आपकी गर्दन नहीं पकड़ी जाएगी, आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, आपको जो है वो यानी सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सजा और जिम्मेदारी और गर्दन पकड़ना सारा का सारा जो है वो आपसे लेकर के जो है वो मर्द के ऊपर डाल दिया गया, ठीक है। कमा के भी उसी ने लाना है, घर के बाहर के सारे काम उसी ने करने हैं, और फिर इन सब चीज़ों के बावजूद उसने आपसे मशवरा करके घर के काम भी मशवरा करके करने हैं, तो फिर इसके ऊपर भी आपको रंज है, तो उस रंज की फिर ना कोई और वजह होती है सर। यानी जिन औरतों को रंज होता है ना कि हमें जो है वो नीचे का दर्जा दिया गया है और हमें ऐसा है, हमारी हमें जो है वो हमारे हुकूक पूरे नहीं किए गए, हमें ऐसा किया गया वैसा किया गया, तो ये जो होता है ना फिर किसी और वजह से ये रंज होता है। और वो और क्या चीज़ वजह होती है, और वजह जो होती है फिर वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्चुअली इस बीवी को जो है वो कुछ के साथ झूठ बोल रहे होते हैं, इसको धोखा दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से फिर ये बीवी जो है वो रंज करती है, वरना रंज की कोई वजह है नहीं। ताहम चूंकि ये एहतमाल था कि मर्दों की इस फजीलत और अपनी महकूमियत से औरतों पर कोई नागवार असर हो, इसलिए हफ्ता आला ने इस जगह सिर्फ हुक्म बतलाने और जारी करने पर इक्तफा नहीं फरमाया, बल्कि खुद ही उसकी हिकमत और वजह भी बतला दी। एक वह भी जिसमें किसी के अमल का दखल नहीं, और दूसरे कस भी जो अमल का असर है, ठीक है ना। यानी इल्लतें भी बता दी कि मर्द को अल्लाह ताला ने जो ऊपर का मुकाम दिया है और औरत को नीचे का जो मुकाम दिया है महकूम का और उसको हाकिम का, तो इसकी वजह क्या है। तो दो वजूहात बताई, एक वह भी वजह जो कि अल्लाह ताला की तरफ से डिसाइडेड होती है जिसके अंदर किसी बंदे के अमल का कोई अमल दखल नहीं होता, ठीक है, और दूसरी कस्बी की जिसके अंदर बंदे के अमल का दखल भी होता है। तो पहली वजह ये इरशाद फरमाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, यानी अल्लाह ताला ने दुनिया में खास हिकमत व मसलहत के तहत एक को एक पर बढ़ाई दी है, किसी को अफजल किसी को मफजूल बनाया है। जैसे एक खास घर को अल्लाह ताला ने अपना बैतुल्लाह और क़िबला करार दे दिया, बैतुल मुकद्दस को खास फजीलत दे दी, इसी तरह मर्दों की हाकिमियत भी एक खुदादाद फजीलत है। खुदादाद का मतलब होता है गॉड गिवन, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये मर्दों को दे दिया है जिसमें मर्दों की सही व अमल या औरतों की कोताही व बेअमली का कोई दखल नहीं है, ठीक है ना। कि औरतों की कोई कोई यानी कोई जन्नत में अमा हवा से कोई कसूर हो गया था या कोई और ऐसा कसूर हो गया था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने जो है वो मर्दों को फोकियत दे दी और औरतों को नीचे रखा, ऐसी कोई रीज़न नहीं है, बस अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, अल्लाह ताला ने ऐसे ही तय किया है। अच्छा, ये तो हो गई वह भी वजह। दूसरी वजह कस्बी और इख्तियारी है कि मर्द अपना माल औरतों पर खर्च करते हैं, मेहर अदा करते हैं और उनकी तमाम ज़रूरियात की जिम्मेदारी उठाते हैं। इन दो वजूहात से मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया गया है। फ़ायदा, यहाँ एक बात और काबिल गौर है। इबन हयान रहमतुल्लाह अलैह बहर मुहीत में लिखते हैं कि आयत में हाकिमियत रिजाल की दो वजहों के बयान से ये भी साबित हो गया कि किसी को विलायत और हुकूमत का इस्तेहकाक महज जोर व तगल्लुब से कायम नहीं होता, बल्कि काम की सलाहियत व अहलियत ही उसको हुकूमत का मुस्तहिक बना सकती है, ठीक है ना। यार अब इससे जो है ना इन्होंने एक शरी मसला भी निकाला या एक इखलाकी मसला, शरी भी कह सकते हैं इसको, इखलाकी मसला भी निकाल सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि भाई इससे ये भी पता लगता है ना कि अल्लाह ताला ने किसी को जो अहलियत दी है ना तो अहलियत की बुनियाद पर फिर उसको हक मिलता है विलायत और हुकूमत का, ठीक है ना। यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा अर्रिजालु कवामून अलन निसा और उसके बाद दूसरी बात शुरू कर दी, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने इल्लतें भी तो बताई ना कि भाई हमने किसी को ऐसी सलाहियत दी है, ठीक है, कि वो कवाम बन सके, और दूसरा ये कि वो अमल भी ऐसा करता है कि वो कवाम बनने के काबिल है, ठीक है। तो इससे क्या पता लग गया कि बगैर किसी इल्लत के ना किसी को उठा करके हाकिम नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। यानी कोई जेन्युइन कॉज, कोई जेन्युइन रीजन, कोई जस्टिफाइबल कॉज होना चाहिए किसी को हाकिम और विलायत देने के लिए। ठीक है, तो काम की सलाहियत और अहलियत ही उसको हुकूमत का मुस्तहिक बना सकती है। ठीक है ना, जस्ट बिकॉज वो खूबसूरत ज्यादा है, ठीक है, या जो है वो और कोई इस किस्म की उसके अंदर, यानी पैदाइशी किस्म की उसके अंदर है, उसके यानी मसल ज्यादा है, या और इस किस्म की कोई वजह, इस वजह से किसी को उठा करके हुकूमत में बिठा देना। ठीक है ना, मैं बाकी तफसील करते ही रहता हूँ, अभी अवॉइड कर रहा हूँ उस तरह की बात करने को। ठीक है, तो ये रीज़न ही होता ना किसी को हुकूमत दे देना। ठीक है, अब जो लोग देते हैं इस तरह की हुकूमत, किसी को ऐसा बना दिया जस्ट बिकॉज वो खूबसूरत ज़्यादा है हजरत, ठीक है ना, तो फिर वो पे करते हैं फिर इसका। मर्दों के अफजलियत के बयान के लिए कुरान हकीम का अजीब असलूब। पहली वजह के बयान में मुख्तसर तरीका यह था कि रिजाल और निसा की तरफ ज़मीरें आयद करके फ़द्दलहुम अलैहिन्ना फरमा दिया जाता, यानी जो अल्लाह ताला ने पहली वजह वहबी वजह जो बयान फरमाई है तो उसमें क्या फरमाया था कि बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि बिमा फ़द्दलहुम अलैहिन्ना, कि इसलिए कि अल्लाह ताला ने फजीलत दी मर्दों को औरतों के ऊपर, फ़द्दलहुम अलैहिन्ना ये नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने, बल्कि बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, ये असलूब इख्तियार किया, ये तर्ज़ कलाम इख्तियार किया। तो इस तर्ज़ कलाम को इख्तियार करने में क्या हिकमत है, वो बयान फरमा रहे हैं कि कुरान करीम ने उन्वान बदल कर, यानी टाइटल बदल कर और अंदाज बदल कर बादहुम अला बादन के अल्फाज इख्तियार किए। इसमें ये हिकमत है कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे का बाज और जुज करार देकर, बाज का मतलब होता है यू आर पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, आप उसका बाज हैं, जुज हैं, पार्ट हैं, तो जुज करार देकर इस तरह इशारा कर दिया कि अगर किसी चीज में मर्दों की फौकियत और अफजलियत साबित भी हो जाए तो इसकी ऐसी मिसाल है जैसे इंसान का सर उसके हाथ से अफजल, या इंसान का दिल उसके मेदे से अफजल है। तो जिस तरह सर का हाथ से अफजल होना हाथ के मुकाम और अहमियत को कम नहीं करता, इसी तरह मर्द का हाकिम होना औरत के दर्जे को नहीं घटाता, बिकॉज ये दोनों जो हैं वो एक ही निज़ाम का हिस्सा हैं, जैसे सर और हाथ ये एक ही निज़ाम का हिस्सा हैं जिसको कि इंसान के जिस्मानी निज़ाम कहते हैं। ठीक है ना, तो जिस तरह दोनों जिस्मानी निज़ाम का हिस्सा हैं, हाँ सर जो है उसके अंदर आँखें होती हैं, उसके अंदर दिमाग होता है, उसके अंदर ज़ुबान होती है, ठीक है ना, और हाथ जो हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं कामों को, उनके बगैर जो है वो इंसान कुछ कर नहीं सकता, बेशक दिमाग जो है वो आइंस्टाइन वाले दिमाग हो, आंखें जो हैं वो बहुत ही 6x6 जो है वो उनकी बसीरत हो, ठीक है ना, जुबान भी बड़ी अच्छी चलती हो, ठीक है ना, और जो है वो कान भी बड़े अच्छे चलते हो, यानी सर के जो है ना वो सारे फंक्शन बड़े अच्छे हो रहे हैं, लेकिन हाथ नहीं है इसके पास, तो अब ये सिर्फ बोलता ही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, देखता ही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, सुनता ही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, कर कुछ नहीं सकता ये, है ना। तो हाथ की अहमियत कैसी है कि उसके बगैर सर के सारे अमल भी जो है ना वो भी काम के नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये औरत और मर्द का मामला भी एक निज़ाम के मुख्तलिफ जुज़ हैं, बेशक जो है वो एक चीज़ जो है वो ज़रा ज़्यादा ऊँची नज़र आती है, लेकिन दूसरे के बगैर पहले का वजूद जो है ना वो एक नामुकम्मल और अधूरा वजूद रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए मिसल आवा और अज्जा के हैं, मर्द सर है तो औरत बदन है। और बाद में मुफस्सरीन ने फरमाया कि इस उनवान से इस तरफ भी इशारा कर दिया गया है कि ये अफजलियत जो मर्दों को औरतों पर हासिल है ये जिन्स और मजमुए के एतबार से है, जहां तक अफराद का ताल्लुक है, यानी ये ओवरऑल जो मर्दों की जिन्स है, यानी सारे मर्द, ठीक है ना, उसको कहेंगे मर्दों की जिन्स, और जो सारी औरतें हैं औरतों की जिन्स कहलाएंगी, तो ये मजमुए के एतबार से, ठीक है ना, ओवरऑल पिक्चर है ये, बिग पिक्चर है ये। जहां तक अफराद का ताल्लुक है तो बहुत मुमकिन है कि कोई औरत कमालात इल्मी व अमली में किसी मर्द से बढ़ जाए और सिफत हाकिमियत में भी मर्द से फायक हो जाए, मर्द से ऊपर हो जाए। क्या मतलब? बहुत से ऐसे मर्द होते हैं कि फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है ना, या तो उनकी तरबियत सही नहीं हुई है, या बेचारे जो है वो ऐसे घर के अंदर पले बड़े हैं जिस घर के अंदर बहुत ज्यादा मसले मसाइल चल रहे थे, तो अब उनकी शख्सियत जो होती है ना वो अच्छी तरीके से निखर के सामने नहीं आती है, तो उनके अंदर फिर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होती हैं, ठीक है ना, दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, उनको बात ही समझ में नहीं आ रही होती, राइट। बहुत सारी जो है ना वो इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर गैप्स रह जाते हैं किसी ना किसी वजह से, हो सकता है किसी बीमारी का शिकार हो गया हो, है ना, हो सकता है किसी ट्रॉमा का शिकार हो गया हो, जैसे कि जालिमों के हत्थे चढ़ गया हो, अब जालिमों ने उसको अगवा वगैरह करके खूब उसकी पिटाई करी हो, उसको जो है वो फिजिकली अब्यूज किया हो, फलाना काम किया हो, अब जो है ना जब ये वहां से छुट करके वापस आया तो इसकी पर्सनैलिटी जो है वो ऐसी हो गई है कि ही इज ऑलवेज स्केयर्ड, हर वक्त डरा रहता है, सहमा रहता है, डिप्रेशन का मरीज हो गया है, फलाना मसला हो गया है, धमकाना मसला हो गया है, ठीक है ना। अब ये जो है तो ये मर्द, राइट, सेक्स के एतबार से अगर देखेंगे तो ये मर्द ही है, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, लीडरशिप कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, और ये जो है वो बेचारा कमाने की भी काबिल नहीं है। तो ऐसा मर्द जो है, मर्द होने के बावजूद जो है इसके मुकाबले में औरतें जो है वो इससे ज्यादा बेहतर होंगी, ठीक है ना। तो ये कहलाता है फर्द के एतबार से ऐसा मुमकिन है कि ऐसा हो जाए, ठीक है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने एक मर्द और औरत वाला सिस्टम बनाया ना वो चीज तो फिर भी रहेगी, यानी दो रीजंस के अंदर एक रीजन जो है वो तो फिर भी रहेगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर ना और भी बहुत सारी हिकमतें हैं जो कि सारी सारी तो हजरत ने यहां पे नहीं लिखी हैं, लेकिन इसको ना हम अपने इवन जैसे एक सोशल सिस्टम के अंदर भी हम ले सकते हैं कि इंसानों का एक जैसे मुआशरा है, जैसे कोई कोई कंट्री है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब एक कंट्री का जो सरबराह है, ठीक है ना, वो जो सरबराह चुना गया है या जिस शख्स को जो है वो सरबराह बनाया गया है, तो अगर वो जेन्युइन तरीके से वो इलेक्टेड सरबराह है, ठीक है ना, जैसे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जो है वो इलेक्टेड सरबराह थे, और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला जो है वो भी इसी तरीके से एक तरीके से जो है उनको सरबराह बनाया गया था, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को भी, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला को भी, ठीक है। अब ये लोग तो थे, ये तो खैर अली अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से तो अफजल कोई है ही नहीं, वैसे भी उमर फारूक रज़ी अल्लाह से भी अफजल कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी जो लोग हैं जिसको भी प्रॉपर तरीके से सरबराह बनाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो उसकी रियाया है, जो उसके मुल्क के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनमें से कोई भी किसी मामले में इससे ज्यादा बढ़ के नहीं हो सकता। हो सकता है, हो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मुल्क के अंदर मिल जाएंगे जो कि बादशाह सलामत से इल्म में भी ज्यादा हो, बहुत सारे ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि बादशाह सलामत से अकल में भी ज्यादा हो, बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो कि दूसरी सलाहियतों में भी बादशाह सलामत से ज्यादा है, लेकिन उनकी इस ज्यादती की वजह से उनको उठा करके बादशाह नहीं बनाया जाएगा, उनको उठा करके प्रेसिडेंट नहीं बना दिया जाएगा, ठीक है ना। प्रेसिडेंट तो एक ही होता है भाई, बादशाह तो एक ही होता है भाई, ठीक है ना, जो कि इलेक्शन या सिलेक्शन के जरिए से, अगर आप लोगों को याद हो साजिद ने 2-3 साल पहले जब वो इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान के अंदर तो एक मजमून लिखा था सिलेक्शन और इलेक्शन, ठीक है, याद है। तो सिलेक्शन हो या इलेक्शन हो, जो भी सरबराह बन गया ना, ठीक है, तो अब जो है ना वो ये नहीं देखा जाएगा कि अच्छा अवाम के अंदर ये साहब जो है ज्यादा इल्म वाले, चलो उनको उठा करके ऊपर बिठा दो, है? एक और साहब मिल गए ज्यादा इंटेलिजेंट, उनको उठा करके ऊपर बिठा दो, नहीं, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे हैं वो नीचे ही रहेंगे, नीचे वाला नीचे रह करके अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करेगा, राइट, वो नीचे रह करके जो है वो मुल्क के लिए अपनी कैपेबिलिटीज को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि पहले मुझे बादशाह बनाओ फिर मैं अपनी सलाहियतों को कंट्रीब्यूट करूंगा मुल्क के लिए, वरना मैं नहीं करता, ऐसा नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से औरत भी जो है वो बहुत सारी चीजों के अंदर मर्द से ज्यादा बेहतर हो सकती है, सलाहियतों के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर, काम के सलीके के अंदर, और ऐसा आजकल के दौर के अंदर बदकिस्मती से ज्यादा देखने में आता है कि मर्द जो है ना वो तो नाज और नाम के पले हुए जो है ना अक्सर ज्यादा होते हैं, उनको उनके वालदैन ने ऐसा पैम्पर किया होता है कि हाँ भाई ये तो लड़का है है ना, हमारे अक्सर घरानों के अंदर ये एक एटीट्यूड पाया जाता है, या कम से कम पिछली जनरेशन में बहुत ज्यादा पाया जाता था कि जी ये लड़का है, इसने तो कोई काम नहीं करना, है ना, इससे तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लड़की ने चूंकि दूसरे घर में जाना है, गैर के घर में जाना है, तो इसको काम करना आना चाहिए। ये मैं कुछ घरानों की बात कह रहा हूँ, हर घराने में ऐसा नहीं होता, कुछ घरानों में और भी बेड़ा गर्क हुआ होता है, लेकिन कुछ घरानों के अंदर ये भी एटीट्यूड था, लड़की को खूब काम सिखाया और लड़के को कुछ भी करना नहीं आता, ठीक है ना। तो अब ऐसा शख्स जो है जब उसकी शादी होती है तो वो जो है ना वो फिर अजीबोगरीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो बिहेव कर रहा होता है, और सारा काम जो घर का है ना वो बीवी कर रही होती है ना, इसके माँ बाप की खिदमत भी बीवी कर रही होती है, अपने माँ बाप की खिदमत भी अगर करनी पड़े बीवी कर रही होती है, हत्ता के कुछ लोगों जगहों पर तो कमा करके भी बीवी ला रही होती है। ये साहब या तो घर में बैठ करके बेगैरत की तरीके से खा रहे होते हैं, या ये जो है ना वो कोई एक बहुत ही बिल्कुल सिंपलिस्टिक किस्म के कोई काम कर रहे होंगे, लेकिन असल काम जो है वो सारा का सारा बीवी कर रही है। हत्ता के ऐसे भी हैं कि ग्रोसरी भी लानी है ना तो वो भी बीवी ने लेकर के आना, गाड़ी भी खराब हो जाएगी तो बीवी ने जाकर के ठीक कराना है। हमारे हजरत ने एक बयान में फरमाया था कि जिस जो मर्द ऐसा कहता ना, और हैं ऐसे लोग कि गाड़ी ठीक हो जाए ना, बीवी को कहता है तुम जाके ठीक करवा लो, हजरत ने बयान में फरमाया था उसको दो थप्पड़ लगाने चाहिए, दो थप्पड़ लगाने चाहिए ऐसे ऐसे शौहर को, है ना। तो वो हजरत ने अपनी बड़ाई की वजह से दो थप्पड़ लगाए, हम जैसे छोटों लोगों से कहें तो हम तो दो डंडे लगाने के से कम पे बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो लतेड़ जिसको क्या कहते हैं वो हमारे पुलिस वाले, चपेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी मामलात होते हैं, लेकिन बहरहाल मर्द तो मर्द है, औरत तो औरत है। तो अब इन चीज़ों का हल जो है ना वो होता है कि प्रॉपर तरबियत की जाए, ठीक है। जो मर्द को करने वाली तरबियत होती है वो बच्चे की जाए, और जो बच्चे को करने वाली तरबियत होती है वो बच्चे की जाए, ताकि मामला जो है वो ठीक रहे। अच्छा, एक और इसके अंदर हिकमत की बात कि ये जो इतना छोटा सा एक सिस्टम है, ठीक है ना, मियां बीवी बच्चों समेत MBBS कहते थे हमारे यहाँ, ठीक है। तो MBBS वाला जो सिस्टम है तो उसमें अल्लाह ताला ने अमीर के बगैर काम ही चलाया, है ना। कहते हैं ना भाई ये तो छोटा सा, ये तो बस एक यानी बहुत छोटी सी एंटिटी है और कोई इससे जो है वो यानी फर्क नहीं पड़ता मुल्क के निज़ाम के ऊपर, इस्लामी हुकूमत के निज़ाम के ऊपर, और ऐसा नहीं होता वैसे, ये बहुत छोटा सा मामला है, चलो भाई अमीर के बगैर काम चल जाएगा, है ना, एक आर्बिट्रेटर के बगैर, एक हाकिम के बगैर काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा सिस्टम है। और ये सिस्टम भी ऐसा है कितना जो है ये यानी कितना ये नाजुक सिस्टम है, ठीक है, कि बस एक तलाक दी टूट गया, खत्म हो गया, है ना। इसके अंदर जो है वो परमानेंस तो दूसरी रीजंस की वजह से आती है, जिसको बरकत कहते हैं, वरना इससे नाजुक रिश्ता जो है ना वो सिर्फ जिंदगी का रिश्ता है, ठीक है। मियां बीवी का जो रिश्ता होता है ना ये इंतहाई नाजुक रिश्ता होता है, इससे ज्यादा नाजुक रिश्ता दुनिया के अंदर कौन सा होता है, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी का रिश्ता, और कोई रिश्ता इससे ज्यादा नाजुक नहीं होता। बहन भाई का रिश्ता इससे नाजुक नहीं हो सकता, ठीक है ना, और माँ बच्चे का रिश्ता नाजुक नहीं हो सकता, बाप बेटे का रिश्ता नाजुक नहीं होता, है ना, चचा भांजे भतीजा का रिश्ता नाजुक नहीं होता, सही है। सबसे ज्यादा नाजुक रिश्ता कौन सा है, मियाँ बीवी का रिश्ता है, तीन तलाक दिया खत्म हो गया, ठीक है ना। और जिंदगी का रिश्ता जो है वो एक अलग डिस्कशन है, जैसे आज हमारे दोस्त हैं उनकी अहलिया का पता लगा, बिल्कुल ठीक ठाक नौजवान, बीमार कोई नहीं थी, लेकिन हाँ हमल से थी, प्रेग्नेंट थी, सीढ़ी से गिरी, इंतकाल हो गया, सही, दुबई के अंदर छोटे छोटे बच्चे उनके, सही है। तो ये जिंदगी का रिश्ता है जो कि मियाँ बीवी के रिश्ते से भी ज्यादा नाजुक है ना भाई। तो ऐसे नाजुक रिश्ते में जिसके की परमानेंस भी कोई नजर नहीं आती, उसमें भी अल्लाह ताला ने अमीर के बगैर काम नहीं चलाया, तो फिर जो बड़े बड़े मामलात होते हैं, राइट, जो कि मुआशरे के मामलात होते हैं, जो कि मुल्क के मामलात होते हैं, जो कि एक सोसाइटी के मामलात होते हैं, वहां पर बगैर अमीर के काम कैसे चल सकता है, है ना, कि भाई कोई आर्बिट्रेटर ना हो, कोई फैसला करने वाला ना हो, कोई हकम ना हो, और वैसे ऐसे ही बस आपस में मशवरा करके काम चला लेना, नहीं हो सकता। जबी तो सुन्नत भी यही है और हमारी तबलीगी जमात का सिस्टम भी यही है, जहां तीन बंदे होंगे ایک کو امیر ہونا لازم ہے, رائٹ, ایک امیر ہونا لازم ہے, بلکہ دو میں بھی جو ہے وہ ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی بات دوسرا مانتا ہو, ٹھیک ہے. تو امیر کے بغیر تو اتنا چھوٹا سا سسٹم نہیں چلتا, بڑا سسٹم کیسے چل سکتا ہے, ٹھیک ہے. آگے پڑھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے مختلف اعمال. اصل میں فون یہاں پر نہیں ہے, ٹائم لیپ ٹاپ پہ نظر نہیں آ رہا, ایک منٹ. ہاں, 10-14. تو مرد اور عورت کے مختلف اعمال تقسیم کار کے اصول پر مبنی ہیں. دوسری وجہ اختیاری جو یہ بیان کی گئی ہے کہ مرد اپنے مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں, اس میں بھی چند اہم امور کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ مثلا ایک تو اس شبہ کا ازالہ ہے جو آیات میراث میں مردوں کا حصہ دوہرا اور عورتوں کا اکہرا ہونے سے پیدا ہو سکتا ہے. یعنی شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی عورتوں کو ایک حصہ کیوں ملتا ہے, کیونکہ اس آیت نے اس کی بھی ایک وجہ بتلا دی کہ مالی ذمہ داریاں تمام تر مردوں پر ہیں, ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ اس لیے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں, بما انفقوا من اموالہم, وہ عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو عورتوں کا حال تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے ان کے تمام مصارف کی ذمہ داری باپ پر ہے اور شادی کے بعد شوہر پر ہے, اس لیے اگر غور کیا جائے تو مرد کو دوہرا حصہ دینا اس کو کچھ زیادہ دینا نہیں ہے, وہ پھر لوٹ کر عورتوں کو ہی پہنچ جاتا ہے, کیونکہ مرد کون ہوگا, یا باپ ہوگا یا شوہر ہوگا, ٹھیک ہے نا, یا اگر باپ اور شوہر دونوں کا انتقال ہو گیا تو بیٹا ہوگا. تو اس کے پاس جو مال آ رہا ہے یہ مال اس نے عورتوں کے اوپر خرچ کرنا ہے, تو الٹیمیٹلی تو یہ مال عورتوں کو ہی پہنچنا ہے نا. تو اس وجہ سے عورتوں کو ایک حصہ دینا جو ہے نا, اس کی حکمت یہ ہے کہ ان کو اس حصے کی ضرورت, ویسے تو اگر کسی دنیا والے کے حوالے یہ کر دیا جاتا تقسیم, رائٹ, تو وہ تو کہتا کہ اس کو ایک حصہ بھی نہیں ملنا چاہیے, کیونکہ اس نے تو گھر میں بیٹھ کر کے کھانا ہے, اس کے اوپر تو اس کے شوہر نے خرچ کرنا ہے, اس کے باپ نے خرچ کرنا ہے, اس کے بیٹے نے خرچ کرنا ہے, اس کے بھائی نے خرچ کرنا ہے, بھائی اس کو ایک حصہ کیوں ملے, اس کو تو ایک بھی حصہ نہیں ملنا چاہیے تھا, ہے نا, یہ بھی تو ایک سوچ ہو سکتی تھی نا. لیکن اللہ رب العزت جو ہوتے ہیں وہ تو کمپلیٹ پکچر کو دیکھ کر کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, ان کی حکمت تو ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک حصہ عورت کو دیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی حکمتیں ہم تو احاطہ ہی نہیں کر سکتے نا, ہمارے پاس تو اتنی عقل ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کر سکیں. ہمارے مشائخ نے تو خالی چھوٹی چھوٹی سی حکمتیں بیان کر دی ہیں جو کہ ہماری سمجھ میں آ سکیں, ورنہ تو ہم تو ساری حکمتیں سمجھ بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو ہمارے حوالے کیا جا رہا ہوتا نا اگر یہ تقسیم, جیسے کہ انڈیا پاکستان کی تقسیم انسانوں کے حوالے کی گئی نا, تو کیا بیڑا غرق کر کے انہوں نے تقسیم کری ہے, ہے نا, ادھر کا ادھر کر دیا, ادھر کا ادھر کر دیا. اسی طریقے سے ہم بھی اسی قسم کی تقسیم کرتے ہیں جس طرح وہ ریڈ کلف کمیشن نے تقسیم کری ہے انڈیا پاکستان کی, ہے نا, اور تو مردوں میں ہماری بھی تقسیم اس سے بھی زیادہ بری ہوتی. دوسرا اشارہ ایک اہم اصول زندگی کے متعلق یہ بھی ہے کہ عورت اپنی خلقت اور فطرت کے اعتبار سے نہ اس کی متحمل ہے کہ اپنے مصارف خود کما کر پیدا کرے. اللہ تعالیٰ نے خلقت یعنی فزیکس اس کی ایسی بنائی ہے اور اس کی فطرت ایسی بنائی ہے. اب کیا ہے اس کی تفصیلات, خلقت کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے, ذرا آپ بھی بولیں. آج صبح جو ہے وہ ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ آن لائن کلاس جو ہوتی ہے نا, ویسے تو بڑی مزے کی لگتی ہے, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ چائے کافی بھی پاس موجود ہوتی ہے, پانی بھی موجود ہوتا ہے, اور آرام سے بیٹھ کر کے جو ہے وہ آن لائن کلاس کر رہے ہوتے ہیں, دفتر نہیں جانا پڑتا, ادھر نہیں جانا پڑتا, ادھر نہیں ہے. لیکن آن لائن کلاس کے اندر نا مینٹل ایگزرشن جو ہے وہ فزیکل کلاس سے زیادہ ہوتی ہے. کیوں, بڑی اچھی بات انہوں نے بولی کہ سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور صرف جو ہے نا وہ استاد کو بولنا ہوتا ہے, جبکہ جب سامنے اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں نا تو ان کی شکل بھی نظر آ رہی ہوتی ہے, کیا حرکتیں کر رہے ہیں, کیا کن مشغولیات کے اندر مشغول ہیں, اور ان سے جو ہے نا پھر آگے سے پھر پارٹیسپیشن بھی کرنی پڑتی ہے سامنے بیٹھے والوں کو. آن لائن میں سارے کے سارے خاموش, ایک ہی بندہ جو ہے نا وہ گھنٹے تک بولتا رہتا ہے اور کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا کہ مجھے بھی کچھ بولنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے آپ بھی کچھ بولیں بھائی. واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ ایک گھنٹہ ختم ہوتا ہے نا یا سوا گھنٹہ ختم ہوتا ہے نا, تو اس کے بعد ایسی حالت ہوئی بھی ہوتی ہے کہ پھر وہ مزید ٹیبل پہ بیٹھ کر کے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا, پھر اس کے بعد کسی اور کام لگتا ہے, کسی اور چیز کے اندر لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو آگے سے بولیں نا کہ خلقت کا کیا مطلب ہے اور فطرت کا کیا مطلب ہے, ساخت, ساخت سے کیا مراد ہے آپ کی, جسمانی طاقت کم ہوتی ہے. فطرت, فطرت میں شرم و حیا ہونی چاہیے, ہوتی ہے کہ نہیں ہے لیکن ہونی چاہیے. फिजिकली एंड इमोशनली वीकर, फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर भाई एक तो होती है बॉडी शेप, ठीक है ना। अब बॉडी शेप भी ऐसा लताने ने बनाया है कि ये बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकती। फुटबॉल की टीम जो होती है ना, तो वो फुटबॉल की टीम में कभी ऐसा नहीं होगा कि ये जो कमीने गोरे हैं ना, जो कि औरतों का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, इनके यहाँ भी आज तक कभी कोई फुटबॉल की टीम देखी है जिसके अंदर मर्द और औरत दोनों साथ फुटबॉल खेल रहे हो? हैं, कोई है ऐसी फुटबॉल की टीम, दिखाए ना जरा भाई। कोई बास्केटबॉल की ऐसी कोई टीम है जिसमें मर्द और औरत जो है वो दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हो? कोई ओलंपिक्स का कोई ऐसा स्पोर्ट है जिसमें मर्द और औरत एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हो? है ना, क्यों भाई? जब बराबर हैं और सब कुछ एक है तो उनको भी एक साथ खिलाओ ना हर चीज के अंदर। नहीं नहीं नहीं, वो तो जी फिजिकल स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है, वो ऐसी हैं, वो ऐसी हैं, ठीक है ना। तो हम इतने बेवकूफ हैं कि हम इन चीजों को समझ नहीं पाते और फिर भी हम उनके दीवाने मस्ताने हुए में आमन्ना और सद्दफना करते रहते हैं काम के अंदर उन्हीं के ऊपर, ठीक है। तो भाई फिजिकल स्ट्रक्चर इन्होंने अल्लाह ताला ने फिजिक्स ऐसी बनाई, कर्व्स ऐसे बनाए बदन के कि जिन कर्व्स की वजह से वो भाग भी नहीं सकती सही तरीके से, राइट। और मर्दों के मुकाबले में कम्पीट नहीं कर सकती, हाँ दूसरी औरतों के मुकाबले में कम्पीट कर सकती हैं, मर्दों के मुकाबले में नहीं कम्पीट कर सकती, ठीक है ना, एक चीज। फिर फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर एक दूसरा मसला जो कि इससे भी ज्यादा बड़ा मसला है, वो क्या जी? फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर जिस्मानी साख के अलावा दूसरा क्या मसला, दूसरा क्या मसला है जी? शादीशुदा मर्द तो तकरीबन सारे ही हैं, नहीं पता बर्थ कैपेबिलिटी, प्रेगनेंसी, नहीं जी, हेयर्स, पीरियड्स, जो खून आता है, ठीक है ना। अब बंदे के अंदर से इतना सारा खून निकल रहा है, उसको संभाले तो कैसे संभाले, राइट। तो भाई ये जो मंथली साइकिल होता है ना, ये जो खून होता है ना, हैज, ये कोई छोटा मसला नहीं होता, ये बहुत बड़ा मसला होता है। औरत को इतनी तकलीफ हो रही होती है, इतना दर्द हो रहा होता है, और इसकी वजह से उसकी जिंदगी इतनी ज्यादा मुतासिर हो रही होती है कि वो क्या जॉब करेगी, क्या जो है वो जाके खेतों में काम करेगी। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था चंद दिन पहले की बात है, आई थिंक जनवरी में, जब मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल में थे, तो पता नहीं कहाँ से वो मुझे किसी ने भेज दिया है, क्या था कि इंडिया के अंदर जो है ना, ये फार्म वर्कर्स, ये जो आजकल नहीं मसला चल रहा था, ये इमिग्रेंट वर्कर्स के अपने घरों को छोड़ करके दूर दूर जा करके फिर वहां पे काम करते हैं, तो अब जब ये लॉकडाउन हुआ तो अब वो इमिग्रेंट वर्कर्स जो है ना, वो सारे के सारे वापस जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया। उसी तरीके से फार्म वर्कर्स होते हैं जो कि खेतों के अंदर काम करते हैं, ठीक है। अब ये फार्म वर्कर्स जो है ना, ये ज्यादातर लड़कियां औरतें होती हैं इंडिया के अंदर, ठीक है ना। अब ये जो औरतें होती हैं, तो भाई ये अपने घरों को छोड़ करके किसी खेत में जाकर के ना, बहुत ही बुरी तरीके का वहां पे उनका रहने का इंतजाम होता है, वहां पे जाकर के इन्होंने खेतों के अंदर काम करना होता है जब वो काश्त का और कटाई का जमाना होता है उसमें, ठीक है ना। अब उनकी जिंदगी इतनी अजियतनाक जिंदगी होती है कि उनको हैज आ रहा होता है, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता, अगर डॉक्टर होता भी है वो भी मर्द होता है, और वो डॉक्टर भी जो है ना, इतना ज्यादा यानी अनहाइजेनिक तरीके से जो है वो इनको डील कर रहा होता है, तो बहुत सो भी तो यानी उनका डेथ भी हो जाती है सिलसिले में, और अगर डेथ नहीं भी होती तो तकलीफ के अंदर होती है, अजियत के अंदर होती है, और कोई उनको ना उसके ऊपर कोई यानी छुट्टी वुट्टी देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। भाई काम तो करना है, काम करोगी पैसे मिलेंगे, काम नहीं करोगी पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो पीरियड्स वाला मसला है ना, मंथली साइकिल वाला मसला, ये मंथली साइकिल्स की वजह से, ये जो आपने लिखा ना चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है, भाई चिड़चिड़ापन भी इन चीजों की वजह से अफेक्ट हो रहा होता है बंदे को। आप जरा किसी हजरत साहब जो है ना, यानी जो मर्द साहब है, उनको जरा किसी बीमारी में मुबतला तो करें, ये हैज का जो दर्द है ना, अगर ये मर्दों को होना शुरू हो जाए ना, फिर आप देखिएगा उनका चिड़चिड़ापन है ना, फिर वो चिड़चिड़ापन आप दिखाएं जरा, फिर पता लगेगा कि मर्दों में कितना जो है वो बर्दाश्त का मादा है। हैज आए ना जरा एक दफा आपको, तो आपको भी पता लग जाएगा, लग पता जाएगा, ठीक है। तो चिड़चिड़ापन जो है उसके भी पीछे ये सारे कॉजेज होते हैं ना। फिर उसके बाद जो फितरत, तो फितरत के अंदर शर्म हया जो कि होनी चाहिए लेकिन निकाल दी गई है ना, ठूस ठूस करके जो है वो शर्म हया जो है वो निकाली गई है इस तालीमी निजाम के जरिए से और मीडिया के जरिए से शर्म व हया को कूट कूट करके औरतों के अंदर से निकाला गया है। वरना तो अल्लाह ताला ने पैदा किया होता है शर्म व हया के साथ, ये फितरत में होता है औरत की। और दूसरी चीज जज्बात, जैसे ऊपर आपने लिखा था उनके जो सेंसिटिविटी होती है या उनके जो इमोशंस होते हैं, अल्लाह ताला ने इमोशंस के साथ औरत को पैदा किया है, ठीक है। तो खिलकत और फितरत में ये दो मेन चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो औरत अपनी खिलकत और फितरत के एतबार से ना इसकी मुतहम्मल है कि अपने मसारिफ खुद कमा कर पैदा करे, ना उसके हालात इसके लिए साजगार हैं कि वो मेहनत मजदूरी और दूसरे जराए कसब में मर्दों की तरह दफ्तरों और बाजारों में फिरा करे, ठीक है ना। फितरत को मस कर देने के बाद फिर उसके बाद वो करती है अपना लिबास उतार करके फिरेगी, हर वक्त जो है वो बाजारों में जाने के चक्कर में रहेगी। लेकिन ये मस्त शुदा फितरत होती है, ये असल फितरत नहीं है। कपड़े उतार देना अपने और बाजारों के अंदर हर वक्त फिरते रहना, ये औरत की असल फितरत नहीं है, ठीक है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो ये इस्तेमाल करती है ना मॉडर्न फेमिनिस्ट औरतें कि जी उन्होंने भी तो बिजनेस किया था, तो भाई वो खुद जाती थी बाजारों के अंदर, वो खुद जो है वो शाम का सफर करती थी, उन्होंने तो दूसरों को अपना बिजनेस हवाले किया हुआ था, ठीक है ना, कि तुम जाओ और तुम जाकर के बस ज्यादा से ज्यादा लिखत पढ़त जो है वो मेरे सामने रख देना। पर्दे के तो अहकाम वैसे भी नहीं आए थे उन दिनों में, ठीक है। तो लिखत पढ़त जो है वो मर्दों से ले लेती थी कि भाई हाँ कितना खर्चा हुआ कितना खर्चा हुआ। और फिर उसके बाद जैसे ही उनको मौका मिला कि कोई ऐसा रिलायबल ट्रस्टवर्दी शरीफ नेक इंसान उनको जैसे ही मिला वैसे ही उन्होंने शादी कर ली, खुद पैगाम भिजवाया नबी अलैहिस्सलाम को ताकि अपने ऊपर से ये जो लिखत पढ़त की जो जिम्मेदारी है ना उसको भी हवाले कर दें, नबी अलैहिस्सलाम के हवाले कर दें, राइट। तो खदीजतुल कुबरा की जो मिसाल इस्तेमाल करते हैं ये तो इंतहाई इल्मी बददियानती है कि उनके बिजनेस को जो है वो बतौर मिसाल के इस्तेमाल करते हैं कि हाँ मुसलमान औरत जो है वो बिजनेस करती है। उनके बिजनेस के तरीके से बिजनेस करो ना तो फिर पता लगेगा। इसीलिए हक ताला ने इसकी पूरी जिम्मेदारी मर्दों पर डाल दी। मसला सारा का सारा यही है कि मर्द जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। मर्द जो है ना सारा मसला मर्दों का है, मर्द ये जिम्मेदारी उठाने के लिए खुद तैयार नहीं होता, इस वजह से औरतों की का बिगाड़ पैदा होता है, ठीक है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी उठा लें ना फिर आप देखें औरतें कैसे लाइन पर आती कैसे सीधी होती, ठीक है ना। ये हमारा अपना मसला है, हम खुद जो है ना वो चोर बाजार वो क्या कहते हैं वो पतली गली से निकलना चाहते हैं सब में, ठीक है ना। बहुत सारे मर्द हैं औरतों की जिम्मेदारी डाली हुई है उन्होंने, हाँ भाई तुम ये काम तुम कर लेना, तुम ये काम कर लेना, तुम उधर ले चले जाना, तुम बच्चे को उधर लेके चले जाना, तुम ये कर लेना, तुम वो कर लेना, है ना। और अपना जो है ना वो अपने लिए उन्होंने मशागिल पाले में, किसी ने दुनियावी मशागिल पाले में, किसी ने दीनी मशागिल पाले में, और औरतों की जिम्मेदारियां लगाई हुई हैं काम की, ठीक है ना। तो ये सारी हरकतें खत्म करेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह औरतें भी सीधी हो जाएंगी, ठीक है ना, पहले खुद तो सीधे हो ना। इसीलिए हक ताला ने इसकी जिम्मेदारी पूरी मर्दों पर डाल दी है। शादी से पहले बाप इसका मुतकफ़िल होता है और शादी के बाद शौहर। इसके बिलमुकाबिल नस्ल बढ़ाने का जरिया औरत को बनाया गया है। बच्चों की और उमूर खानदारी की जिम्मेदारी भी इसी पर डाल दी गई है, जबकि मर्द इन उमूर का मुतहम्मल नहीं हो सकता, ठीक है। मर्द बच्चे नहीं संभाल सकता, मर्द इस तरीके से बच्चों का मामला नहीं कर सकता जैसे कि औरत करती है। इसलिए ये नहीं समझा जा सकता कि औरत को अपने नफकात में मर्द का मोहताज करके उसका रुतबा कम कर दिया गया है, बल्कि तकसीम कार के उसूल पर ड्यूटियां तकसीम कर दी गई हैं। हाँ ड्यूटियों के दरमियान जो बाहम तफाजुल हुआ करता है वो यहाँ भी है, यानी मैनेजर एक होता है जो उसका एम्प्लॉई होता है, ठीक है। तो काम उसका भी अलग होता है, मैनेजर के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर जो है वो यानी उसका दिमाग ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और जो रिपोर्टी होता है उसके पास फिजिकल काम ज़्यादा होता है, और उसका दिमाग जो होता है वो मैनेजर के मुकाबले में रिलेटिवली स्पीकिंग कम इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर लोड उतना ज़्यादा नहीं होता, मेंटल लोड उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि मैनेजर के ऊपर होता है। उसी तरह से औरत और मर्द का भी मामला है, औरत के ऊपर फिजिकल लोड घर के मामले में, क्योंकि बच्चों को संभालना एक बहुत बड़ी फिजिकल जिम्मेदारी है। कपड़े धोना चाहे मशीन के जरिए से धोए जाएं, फिर उनको फैलाना, फिर उनका जो है वो ख्याल रखना, फिर उसके बाद लोड खसूसा जब जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं वहां तो लॉन्ड्री बार बार करनी पड़ती है, پھر برتنوں کا خیال کرنا، پھر دوسرے معاملات کرنا، اس میں فزیکل ایفرٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مردوں میں فزیکل ایفرٹ زیادہ سے زیادہ، جو مزدور طبقہ ہوتا ہے نا وہ فزیکل ایفرٹ زیادہ کر رہا ہوتا ہے، جو دفتری طبقہ ہوتا ہے یا ایون دکان پہ بیٹھنے والا ہوتا ہے تو وہ دکان پہ کئی گھنٹے بیٹھ رہا ہوتا ہے اور اس نے جو ہے وہ صرف ایک ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، زبانی ڈیلنگ زیادہ ہوتی ہے۔ فزیکل ایفرٹ جو ہے وہ ذرا جو نچلا طبقہ ہوتا ہے وہ فزیکل ایفرٹ زیادہ کر رہا ہوتا ہے، ورنہ مرد کا جو ہے وہ یعنی برین ورک زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ عورت کو اپنے نفقات میں مرد کا محتاج کر کے اس کا رتبہ کم کر دیا گیا ہے، بلکہ تقسیم کار کے اصول پر ڈیوٹیاں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ سر خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں وجہوں کے ذریعے سے یہ بتلا دیا گیا کہ مردوں کی حاکمیت سے نہ عورتوں کا کوئی درجہ کم ہوتا ہے اور نہ ان کی اس میں کوئی منفعت ہے، یعنی مردوں کا کوئی منفعت اس کے اندر ہے، بلکہ اس کا فائدہ بھی عورتوں ہی کی طرف عائد ہوتا ہے، یعنی پلٹ کے عورتوں ہی کو اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ صالح بیوی، اس آیت کے شروع میں بطور ضابطہ یہ بتلا دیا گیا کہ مرد عورت پر حاکم ہے، اس کے بعد نیک و بد عورتوں کا بیان اس طرح فرمایا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی نیک عورتیں وہ ہیں جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت کرتی ہیں اور مردوں کے پیٹھ پیچھے بھی اپنے نفس اور ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیک عورتیں تو یہ ایسی ہوتی ہیں، لیکن اس عورت کا کیا کیا جائے جس کے باپ نے اس کو نیک بننے نہیں دیا؟ تو اس میں قصور باپ کا ہے کہ اس بچی کا ہے؟ باپ جو ہے نا وہ اس سکول سسٹم کے اندر اپنی بچیوں کو ڈال ڈال کر کے جو ان کا بیڑا غرق کرتا ہے، پھر وہ ان بچیوں سے نیکی کا تصور نہیں کر سکتا، ان سے نیکی کی ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ذمہ دار جو ہوتا ہے نا وہ باپ ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کی برائی کی طرف جانے کا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے نا یہ بالکل ڈسکنیکٹڈ طریقے سے جو ہے نا ہم جو ایکسپیکٹیشنز جو دوسروں سے رکھ لیتے ہیں کہ ہاں بھی اس کو نیک ہونا چاہیے اور اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس کو ویسا ہونا چاہیے، یہ ویکیوم میں نہیں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ٹو ایوری تھنگ ایلس، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اگر نیکی تلاش کرنی ہے نا تو اس کے لیے آپ کو نیک باپ اور نیک ماں کی بیٹی کو تلاش کرنا ہوگا۔ آپ جو ہے وہ اپنے جیسے کسی دنیا دار قسم کے اور لالچی اور بے یعنی خدا کا خوف نہ رکھنے والے شخص کی بیٹی کو بیاہ کر کے لے آئیں اور پھر اس سے ڈیمانڈ رکھیں، دیکھو قرآن کے اندر لکھا ہوا تھا کہ صالحات قانتات حافظات للغیب، تو تم کیوں نہیں ہو بھائی صالحات قانتات حافظات للغیب، رائٹ۔ تو یہ اللہ کے بندے تمہیں شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، اگر تم نے نہیں سوچا تو اپنی بیوی کو ذمہ دار مت ٹھہراؤ، اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراؤ۔ یا یہ کہ تمہاری شادی اگر کسی تمہاری ماں نے تمہاری باپ نے یہ شادی کری ہے ایسی لڑکی سے تو اپنے ماں باپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں، ماں باپ سے تو ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے تو ہم سارا الزام جو ہے نا وہ بیوی پہ ڈال دیتے ہیں، تم کیوں نہ نیک بنی، تم کیوں نہیں قانتات بنتی ہو، میری اطاعت کیوں نہیں کرتی ہو، رائٹ۔ تو یہ نہیں ہوتا اس طریقے سے نا۔ لڑکی کی طبیعت کا انداز کس قدر مختلف ہونا چاہیے لڑکوں کے مقابلے میں، جتنا لڑکیاں لڑکوں سے مختلف ہوتی ہیں نا اتنا ہی لڑکیوں کی تربیت لڑکوں کی تربیت سے مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو اس سے زیادہ کمپریہنسو جواب اتنی تھوڑی سے ٹائم کے اندر اور کلاس کے اندر نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر یہ جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا تو پھر اب آپ اس کی کھوج میں لگیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ جیسے جیسے فرق سمجھتے جائیں گے ویسے ویسے تربیت کا انداز بھی مختلف سمجھتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ تو یعنی ایک کمپلیٹ کمپریہنسو موضوع ہے۔ اچھا، تو نیک عورتیں وہ ہیں جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت کرتی ہیں اور مردوں کے پیٹھ پیچھے بھی اپنے نفس اور ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی اپنی عصمت اور گھر کے مال کی حفاظت جو امور خانداری میں سب سے اہم ہیں ان کے بجا لانے میں ان کے لیے مردوں کے سامنے اور پیچھے کے حالات بالکل مساوی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہ اللہ کی خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی سامنے پیشی کے خوف کی وجہ سے وہ اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہیں، تو مردوں کے خوف کی وجہ سے خالی نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سامنے ہو یا پیچھے ہو ان کے حالات جو ہیں وہ بالکل مساوی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کے سامنے تو اس کا اہتمام کریں اور ان کی نظروں سے غائب ہوں تو اس میں لاپرواہی برتیں. یہ نیک عورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے طور پر ارشاد فرمایا کہ خیر النساء امراۃن اذا نورت الیہا صبرت کا و اذا امرتہا اطاعت کا و اذا غبت عنہا حفظت کا فی مالہا و نفسہا. کہ یعنی بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو, اور جب اس کو کوئی حکم دو تو وہ اطاعت کرے, اور جب تم غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے. چونکہ عورتوں کی ذمہ داریاں یعنی اپنی عصمت اور شوہر کے مال کی حفاظت دونوں آسان کام نہیں ہیں, اس لیے آگے فرما دیا بما حفظ اللہ, یعنی اس حفاظت میں اللہ تعالیٰ عورت کی مدد فرماتے ہیں. یعنی اللہ کی حفاظت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے یہ اپنی عصمت اور شوہر کے مال کی حفاظت کر پاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو تفسیر میں کیا لکھتے ہیں کہ اس حفاظت میں اللہ تعالیٰ عورت کی مدد فرماتے ہیں, انہی کی امداد اور توفیق سے وہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوتی ہیں, ورنہ نفس و شیطان کے مقائد, یعنی مقائد کیا ہوتے ہیں, ان کی ٹرکس, نفس کی ٹرکس اور شیطان کی ٹرکس ہر وقت ہر انسان مرد و عورت کو گھیرے ہوئے ہیں, اور عورتیں خصوصاً اپنی علمی اور عملی قوتوں میں بنسبت مرد کے کمزور بھی ہیں. اس کے باوجود وہ ان ذمہ داریوں میں مردوں سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہیں. اچھی عورتیں, ٹھیک ہے نا, زیادہ مضبوط نظر آتی ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور امداد ہے. یہی وجہ ہے کہ بے حیائی کے گناہوں میں بنسبت مردوں کے عورتیں بہت کم مبتلا ہوتی ہیں. یعنی مبتلا ہوتی ہیں, لیکن مردوں میں سے اگر 10 مرد مبتلا ہوں گے نا تو عورتوں میں سے 10 میں سے ایک بے حیائی کے گناہ کے اندر مبتلا ہوگی. اطاعت شعار, تابعدار عورتوں کی فضیلت جہاں اس آیت سے مفہوم ہوتی ہے وہاں اس سلسلے میں احادیث بھی وارد ہیں. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار و مطیع ہو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں پرندے ہوا میں, مچھلیاں دریا میں, اور فرشتے آسمانوں میں, اور درندے جنگلوں میں. سبحان اللہ, یہ والی حدیث یعنی یہ والی فضیلت تو روزے دار کے لیے ہے, اور یہی فضیلت جو ہے وہ رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے باہر بھی سارا سال اس عورت کو ملتی رہتی ہے کہ جو اپنے شوہر کی تابے دار و مطیع ہو. ٹھیک ہے. اب جائیں جا کر کے بیگم صاحبہ کو یہ حدیثیں سنائیے گا, اور پھر اس کے بعد جو تماشا ہو نا پھر وہ آپ کی بیگم ہی پھر ہمیں بتائیں گے. ٹھیک ہے. یہ غلطی مت کیجیے گا خدا کے واسطے. ٹھیک ہے. تو تھوڑا ٹائم ہمارا مکمل ہو چکا ہے, تو اس وجہ سے کلاس روکتے ہیں. باقی ان شاء اللہ اگلی کلاس میں کسی کو اگر کوئی اور سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے. چلیں, کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.